नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, इसलिए दल बदलना विचारधारा पर टिके रहने से ज्यादा चलन में है। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता से दूरी के बाद अगला लक्ष्य यूपी विधानसभा चुनाव है और इसके लिए चुनावी चौसर पर बिसात बिछने लगी है। आज का न्यूज मेकर में चर्चा करेंगे दल बदलने के मामले में भाजपा की एक और बड़ी बढ़त की। साल 2020 की होली आपको याद होगी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। अब एक बार फिर बुधवार को टीम राहुल के एक और बेहद खास और युवा ने पार्टी को झटका दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की सियासत में जितिन प्रसाद की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, जबकि जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने पिछले 7-8 सालों में अनुभव किया कि असल मायने में अगर कोई संस्थागत राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के बनकर रह गए। जितिन प्रसाद ने अपनी बात की शुरुआत ही इस बात से की कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि किस दल को छोड़कर आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के बारे में जितिन प्रसाद ने कहा कि वहां मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के जरिए अब मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। वैसे जितिन प्रसाद के भाजपा प्रवेश के साथ पार्टी ने भी साफ कर दिया कि जितिन प्रसाद की यूपी इलेक्शन में बड़ी भूमिका रहने वाली है, पर असल में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों, इसको लेकर कई कारण सामने आए। मसलन कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक जितिन प्रसाद पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज बताए जाते हैं। वो पिछले काफी समय से कांग्रेस में तवज्जो न मिलने और यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। जितिन प्रसाद की शिकायत को पार्टी हाईकमान ने लगातार नजरअंदाज किया, इसीलिए आखिर में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। अब बड़ा सवाल ये कि जिस तरह पिछले दिनों यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस को लेकर नाराजगी, संघ की तलखी की खबरें चली, उसके बाद से साफ था कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कुछ बड़े बदलाव कर सकती है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने सभी सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने से कर दी है। पार्टी में अंदर खाने खबर ये भी है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका पार्टी से छिटका हुआ है। उनकी नाराजगी की वजह खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और ऐसे में बीजेपी जितिन प्रसाद को शामिल करवा के ब्राह्मणों के बीच एक बड़ा संदेश देना चाहती है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों पक्षों से प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा। कांग्रेस में कभी टीम राहुल का मजबूत पिलर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने पर कहा कि मुझे खुशी है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके लिए खुश हूँ। ऐसे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि भाजपा के थिंक टैंक ने जितिन प्रसाद को लेकर पूरी तैयारी, पूरी रिसर्च की। चलिए आपको बताते हैं जितिन प्रसाद के राजनीतिक करियर के बारे में। जितिन प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जीतेंद्र प्रसाद दो प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। साल 2000 में जीतेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन पार्टी के भीतर एक स्ट्रांग मैसेज देने में कामयाब रहे थे। साल 2001 में जितेंद्र प्रसाद के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला उनके बेटे जितिन प्रसाद ने। साल 2001 में वो इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े। साल 2004 में जितिन प्रसाद यूपी के शाहजहांपुर सीट से जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे। यूपीए 1 सरकार में जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तब मंत्री बनने वाले वो सबसे युवा चेहरों में से एक थे। फिर साल 2009 में जितिन प्रसाद धौरहरा लोकसभा सीट से लड़े और जीते। यूपीए 2 में जितिन प्रसाद को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। साल 2014 का चुनाव जितिन प्रसाद हार गए और इसी के बाद से जितिन प्रसाद के राजनीतिक सितारे गर्दिश में चलते रहे। जितिन प्रसाद पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी कांग्रेस में तवज्जो न मिलने से बेहद नाखुश थे। जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में रही और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू बनाए गए, तब से जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस में कोई खास महत्व नहीं दिया गया और इस बात की नाराजगी वो खुले मंचों पर कई बार जताते भी रहे। यूपी कांग्रेस की कई समितियों में जितिन प्रसाद को शामिल नहीं किया गया। साल 2019 से ही जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी आती रहीं, जिन पर विराम लगाते हुए जितिन प्रसाद ने तब कहा था कि वो काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाकर डैमेज कंट्रोल का मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक पंडितों ने इसे भी आलाकमान की पैंतरेबाजी बताया। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने से कहीं ज्यादा यूपी की सियासत से दूर करने के प्रयास के तौर पर देखा गया, और इसके बाद से जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़ना तय माना जा रहा था। वैसे जिस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ने का निर्णय पक्का किया, वहां विधानसभा चुनाव में दीदी की शानदार जीत के बाद एक बार फिर से नेताओं ने पाला बदला है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम और बर्दवान जिले के कई बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। बीरभूम के लाभपुर के विप्रतिकुरी गांव में लगभग 30 से 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े नाटकीय अंदाज में पूरे गांव में घूम घूम कर लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया कि टीएमसी के खिलाफ प्रचार करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए वो माफी मांगते हैं। हालांकि इस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा शुरू हुई, उसी से डरकर कार्यकर्ता अब टीएमसी में वापस जा रहे हैं। इधर टीएमसी में लौटने वाले कार्यकर्ता कहते हैं कि चुनाव में हार के बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा था तो बीजेपी के कोई बड़े नेता बचाव के लिए सामने नहीं आए। वैसे अब केवल कार्यकर्ता ही नहीं, कुछ बड़े नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, जो बीजेपी छोड़कर पाला बदलकर टीएमसी में वापस आ सकते हैं। कुल मिलाकर पाला बदलने की घटना न तो नई है और न ही असामान्य। बीते साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चलती सरकार के 22 विधायकों ने एक साथ हाथ का साथ छोड़कर न केवल सरकार गिराई थी, बल्कि इसके बाद भाजपा में जाकर चुनावी मैदान में उतरे और 19 विधायकों ने जीत हासिल की। काफी विधायकों ने मंत्री पद भी वापस पाया। दक्षिण के राज्यों में भी भाजपा ने कूटनीति और लंबी तैयारी के साथ असंतुष्टों को साध कर कई बार पांसा पलटा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ये रणनीति भी उसे सत्ता नहीं दिला पाई। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। कह सकते हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे कई नेता कतार में हैं, जो इस पार से उस तरफ जाने के लिए बेकरार हैं। देखना होगा चुनाव आते आते क्या तस्वीर उभरती है और जाते जाते क्या नतीजे देकर जाती है। आज का न्यूज मेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।